आठवीं सभा के अध्यक्ष श्री स्वामी भक्ति वेदांत नारायण बाबूबाजी महाराज और मुख्य अतिथि महोदय, जगत श्री कृष्ण जैन संप्रदाय के मूल आधार श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी के चरणों में बार बार नतमस्तक हूँ। सभी अतिथि यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, आप सबको मालूम है मेरी हार्दिक श्रद्धा आपके प्रति की है। मैं आप सभी के चरणों में अपनी भावहीन प्रणति या भावहीन अंजलि निवेदित करती हूँ। शायद यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके चरणों में मैंने भागवत का अध्ययन न किया हो, बस यही मुझे कहना था। अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आगे
जात पात हम के बनाई अधिकार जनावत गावे जाके अधिक
अभी आप पति भूल चुके हैं, उनकी वाणी आपको सुनी और उससे भी आपको प्रतीत हुआ कि उनकी वाणी में कुछ विशेष बात है, उनके हृदय में कुछ विशेष गलत है। एक मैंने जब उस कार्यक्रम के संदर्भ में संपर्क में आया, जैसे भी हम बात की है वो
हमें दो दो जाना है।
जो बिना पूछे अनायास कह दी गई, उसमें ही एक ही प्रश्न का आ गया, क्या यह उचित है? सुखदेव जी नाराज हो गए और उसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा, यह शिष्य वेतन होगा। सभी लीलाओं का कथा रूप में व्यक्त किया गया है और वर्णन कुछ इस प्रकार का होता है कि अन्य अवतार गौर हो जाते हैं और श्री कृष्ण का अवतार पुरुष हो जाते हैं। एक चांद करा उनका कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण अवतार ही है और लोग उनके अंत समूह है। तथा इतिहास में यदि रस भाग के विद्वान जानना चाहे तो ऐतिहासिक प्रवृत्ति का अर्थ दिया गया है। दसम स्तंभ से दसम स्तंभ तक की भावना है, लाल मेरे लाल की सब जगह रही समान और लाल विशेषण में रही मैं भी हो गई। अखिल चार उससे अखिल स्तर अक्षर अक्षर पद पद में लक्ष्य वक्त और जब व्यंग्यार्थ हो अभिधार हो सारी खाली श्री कृष्ण का शब्द की भूमिका। यदि हम देखें कि श्री कृष्ण की प्रबल योजना एक ऐसी नायिका है जो अन्य प्रकार के भाव प्रदर्शन करती है और जो अंत में उन्हीं श्री कृष्ण में समा जाती है। भागवत शास्त्र आख्यान भी है, कथाएं भी है, बात कथा है, इसमें पूर्वावर विचार भी किया गया है। इसी कार्य संबंधित व्यक्ति बड़ी मनोरम है। यह रस और माधुर्य का अद्वैत स्रोत है। कितनी भी बार सुनने कितनी भी बार रहे विद्यालय चांदनी ऐसा रस में यह भी जिसमें दो दो गाने को दी जाता है और सुनाई दे महाराज थोड़ा और पुराण की शैली और काव्य की शैली में अंतर होता है। लेकिन भागवत में पुराण भी मिलता है और काव्य भी मिलता है। इसकी प्रबंध योजना अभी भी कभी कभी तो ऐसा कठिन होने लगता है कि माधुरी की भूमिका लीला का वर्णन करना ग्रंथ का तात्पर्य भी है। फिर भी संपूर्ण ग्रंथ का तात्पर्य निर्णित किया जाए तो लीला के वर्णन का ही पक्ष उभरता है और अन्य उसे सहायक मात्र लगते हैं। आदि मध्य अंत में है क्या श्री जी लीलाई का भगवान है? यदि हमने आप रुचि कथा या ईशानु कथा या मनमंदर है नहीं कहीं भी देखिए वो श्री जी से जुड़े हुए सब अतीत होते हैं। जो कुछ भी है उनके अवतार की लीला है, उनके अंत समूह की लीला है और उनके भक्तों की जान है। और यदि मुख्य अवतार श्रीमद् भागवत के अनुसार किसी एक श्लोक के अनुसार भी मान लिए जाए तो अवतार आदि असंख्या के अनुसार जिसका भी वर्णन है वे अहिंसा अवतार है या वे भगवत भक्त भगवान तो इसी में बार बार भागवत में परिचित कहते हैं कि यदि वे भगवान के चरण कमलों के मकरंद का रस पान कराती हो तो आप इसे यह कथा अवश्य सुनाए और परिचित सब कुछ सुना दीजिए। सर्वदा और सर्वत्र किसी किसी की सत्ता और किसी किसी के अस्तित्व का ही अनुभव कराना भागवत के श्री कृष्ण के हस्तर उसमें कुछ नहीं है। और बाकी दो जो हमने पुस्तक आप पढ़े थे उसके विषय में बताएंगे, ये सारे काफी है जो कि अभी विचार कोशिश कर रहे हैं।
भगवान सूर्य नारायण विचार करने लगे आज मेरे कन्या कहा बनी है, मेरे तो ये कन्या ही रुपये है कि बहुत पहले है। तो भानु के भाई है, हाँ हाँ भानु के भाई है दांत, और एक जमुना है दूनी अतिरल है रहो।
में राधा जी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, विद्वानों ने उसमें अनेक प्रकार की कल्पनाएं संभावनाएं दी है और विद्वानों के वाचन से आपको इस रहस्य का पता लगेगा। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर शेखर देवी शर्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय का प्रवर्तन करने की कृपा करें।
आज दो ग्रंथों का विमोचन हुआ, पहला ग्रंथ था श्रीमद् भागवत की प्रबंध योजना, ये डॉक्टर मधुका द्वारा लिखा हुआ शुभ क्रम है, इनके निर्देशक हैं डॉक्टर जैक्सन खंडेलवाल। इनका जिस समय विषय पास हुआ था उसमें मेरे अंतर्गत एक विद्यार्थी कार्य कर रहा था रामहरि गुप्ता। जैक्सन जी ने इच्छा व्यक्त की आप मथुरा रहते हैं, मैं यहाँ आगरा रहता हूँ, रामहरि गुप्ता को मुझे दे दीजिए, मधु गुप्ता को आप दे दीजिए। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शायद डॉक्टर मधु गुप्ता को इसका पता भी नहीं होगा। लेकिन रामहरि गुप्ता ने ये कहा कि मैं तो आपके निर्देश में रहना चाहता हूँ, मैं निर्देश में बदलना नहीं चाहता, इसलिए इसी प्रकार से कार्य हुआ। प्रसन्नता में इस बात की है आज ग्रंथ का विमोचन हो रहा है उस पर मैं उपस्थित हूँ, और डॉक्टर मधु गुप्ता ने जो कार्य किया है विषय में वो अत्यंत ही प्रसन्न हुई है। और सबसे गौरव का विषय तो यह है कि ब्रज क्षेत्र ही श्रीमद् भागवत का एक अपार भूम क्षेत्र है, यहाँ कितने मर्मज्ञ विद्वान निवास करते हैं, उन सभी का उन्होंने सानिध्य प्राप्त करके इस ग्रंथ को लिखा है, और उन्होंने इस महापुराण को भी एक प्रबंध काव्य के रूप में संगठित करने की चेष्टा की है, ये बड़ी प्रशंसा की चीज। दूसरा ग्रंथ का विमोचन हुआ है आचार्य कैलाश चंद्र कृष्ण, उनके संपर्क में तो मुझे बचपन से ही रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका मैंने ब्रज भाषा के रीति मन समर्पित कर दिया है। ये तो ठीक वो कह रहे हैं, लेकिन वो संस्कृत के उतने ही विद्वान है जितने वो ब्रज भाषा को, उनको पुराणों का वेद वेदांगों का कितना गहनतम अध्ययन है, और शोध के क्षेत्र में वो किसी सामग्री पर जुटाए रखते हैं, चलते फिरते एक कार्य करते रहते हैं, और ये शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही निधि है। अच्छा, उनके ग्रंथ का भी आज विमोचन हुआ है, वो भी राधा से संबंधित है, इसलिए वो अत्यंत मेरे हृदय के और श्रद्धा के पास। मैं इसमें दोनों अपने अपने क्षेत्र में जिस कार्य करने वालों के लिए अत्यंत प्रशंसा करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये अपनी दिशा में और बढ़े। किसी रूप से आज चार गोष्ठी का विषय रखा गया है श्रीमद् भागवत में राधा तत्व। ये विषय जितने दर्शन का क्षेत्र है या मुक्ति का क्षेत्र है, इसका बड़ा गूढ़ विषय है। यहाँ हमारे परम विद्वान पूज्य गोस्वामी जी विराजमान है, नित्य प्रति इसी में तन्मय रहते हैं। मुझको तो ऐसा हुआ कि मैंने दर्शन के 5000 विषय जो मुख्य विषय हैं, शांकर वेदांत का द्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अत्यंत वेदाद्वैत, इस मैंने सिद्धांत विषय को पी एच डी का विषय बनाया था, इसलिए मुझे 5 विषय में आचार्य बात करनी पड़ी थी वेदांत के। मित्रताओं कितना कठिनाई होती है कर्म संतों का अध्ययन करने के लिए। वैसे आज भी हिंदी और संस्कृत में बहुत ही शोध के कार्य हो रहे हैं और राधा कृष्ण ने बहुत कुछ सिखाया चुका है। बंगला साहित्य में इसके संबंध में बहुत सिखा गया है। किंतु मेरा एक विशेष निवेदन है कि हम कौन करता है इस प्रकार की दुरुस्ती त्रुटियां कर डालते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है प्रतिष्ठाना। भक्ति का जो क्षेत्र है वो सच से कभी नहीं आका जाता। भक्ति का क्षेत्र से एक गुण विषय है, भावना का विषय है, उसमें दो और दो चार नहीं होते, वहां वैज्ञानिकता नहीं लाई जाती। और जहां तक राम तत्व है, सीता तत्व है, कृष्ण तत्व है, राधा तत्व है, ये तो ऐसे हमारे तत्व है, इनके विषय में तो थोड़ा सा शोध नहीं करनी चाहिए। किंतु ऐतिहासिक जो तथ्य है, हिस्टोरिकल जो फैक्ट है, उनको हमें रखने की आवश्यकता है। वो अपार जो गहनतम ग्रंथ है उनके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है सामग्री। और आज डॉक्टर शब्द जो लग जाता है उसको देखते हुए एक बार आवश्यकता पड़ी विश्वविद्यालय में भी। एक मर्मज्ञ विद्वान है आज भी डॉक्टर चंद्रलाल पारासर, उनको मैं गाइड बना रहा था, दो वर्ष का एमए का अनुभव था। वहां एक क्लर्क आए, वो कहने लगे साहसा का टीचर नहीं कैसे बन सकते। तो कहने का मतलब वहां पर एक विद्वान थे बनारस के यूनिवर्सिटी के, उनका तुम्हारे सामने पानी दिया जाता था, उनको साहसा का एक्सपीरियंस था, उन्हें तुम गाइड करा नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कॉलेजों में आप कार्य कर लीजिए, अध्यापन कर लीजिए, विशेष याद रख करें। किंतु कुछ एक प्रकार के व्यक्ति हैं जो मौलिक चिंतन अध्ययन करते हैं, वो विश्वविद्यालय जैसी जगह सुदृढ़ होता है। और उन ग्रंथों के आधार पर ये राधा तत्व का क्या विमर्शन किया गया विद्वान हुए, इस संबंध में थोड़ा सा मेरे अपने विचार। हम लोग हर दिशा में यह प्रतिवादी है। राधा तत्व तो इस प्रकार का एक तत्व है जिसके विषय में विचार करना बहुत आवश्यक है। श्रीमद भागवत को हम राधा के संबंध में लेते हैं और अन्य पुराणों को लेते हैं। कुछ गुरुतियां राधा के संबंध में है, उनका सुलझाना आवश्यक भी है और अधिकांश जो केवल भागवत के बारे में जानते हैं। दर्शन के अवस्थि के क्षेत्र में हमारे नाम और नामी दो शब्द चलते हैं, तो उन शब्दों को लेकर के जितने मर्ग विद्वान हुए कालिदास जी हुए, उन्होंने जो पहले रिखाए गए उसमें बागत जगत बंदे पार्थी पर, उनका तात्पर्य शिष्यों का कहने का कि वाणी में ही अर्थ रहता है, शब्द में ही अर्थ रहता है। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में जितनी उपासना की जाती है उसमें नाम की उपासना की जाती है। नाम चाहे वो गुणवाचक नाम है या कर्मवाचक, इसी दृष्टि से किसी भी नाम को ले लीजिए, राधा नाम को लीजिए, कृष्ण नाम को लीजिए, राम को लीजिए, सब में नाम की उपासना है। नाम के साथ में नाम ही उसमें अंतर्निहित रहता है, क्योंकि रस के साथ में भाव रहता है तो शब्द के साथ अर्थ रहता है, तो नाम में तो नाम ही रहेगा। यदि नामी का ध्यान विशेष रूप से होता तो नाम का उच्चारण करना ही लाभदायक नहीं होगा। आप देखेंगे छोटा सा यही है कि राम राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण और ये थोड़ा सा एक ही छोटा सा श्लोक है। इसमें केशव के साथ में कृष्ण जोड़ दिया, राम के साथ राघव जोड़ दिया। राम को बताया गया कौन सा राम जो राघव है, रघुवंश से संबंधित है, कृष्ण कौन सा जो केशव कौन सा जो कृष्ण से संबंधित है। तो देखिए इन शब्दों में इनका कितना गुरु भाव है। राम में रमन से योगी रमन करें वो राम तत्व, उस राम तत्व जन्म लेने वाले उधर ही इसी दृष्टि से देखिए कृष्ण कौन से केशव। हाँ अभी राधे श्याम जी ने बताया थोड़ा सा जल्दी जल्दी समाप्त कर लिया जाए तो मैं राधा तत्व को विशेष रूप से बताऊंगा। राधा तत्व में श्रीमद भागवत में एक ही कथन है, अनिया राजकुंड भगवान हरि। श्रीमद भागवत में राधा नाम कभी नहीं आया, श्रीमद भागवत में से गोपी का नाम आया है जो आराधना करने वाली थी। अब कितनी गोपियां हैं, गोपश्री परमेश्वर से गोपालश्री रमन, अनेक गोपियों में एक विस्तृत प्रधान गोपी थी जो आराधना करती थी श्री कितना नाम से श्रीमद भागवत में आया। और उपराण वगैरह में आगे चलते राधा नाम भी आया, राधा के विवाह के संबंध में जो प्रार्थना वगैरह चीजें। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि राधा क्या है, राधा भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति, भगवान शक्तिमान है, शक्तिमान ने एक शक्ति प्राप्त करती है जिसे हम राधा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण ने इसी प्रकार से शक्ति है। अब प्रश्न पैदा होता है कि एक अद्वैत तत्व, एक किसी प्रकार से अद्वैत तत्व द्वैत के रूप में कैसे प्रकट होता है भगवान श्री विद्या के रूप में, उस अपनी दूसरी शक्ति का एक आनंद लेना चाहते हैं, लीला स्वादन करना चाहते हैं, तो वो अद्वैत तत्व द्वैत के रूप में प्रकट हो जाता है। वो होता कहाँ है, वैसे देखा जाए हमारे यहाँ पर ये कहा गया है एक तो किसी प्रकार से भगवान की प्रकट लीला चलती है, एक भगवान की प्रकट लीला चलती है। अप्रेत लीला जो है वो गोलोक धाम में चलती है, अप्रेत लीला वाला गोलोक धाम है वही प्रकट लीला वाला वृंदावन कहलाता है, तो वो अप्रेत वृंदावन कहलाता है जिसे हम गोलोक धाम कहते हैं। तो वो हमारा एक तत्व जो है जब किसी प्रकार से लीला को करने की चेष्टा करता है तो कृष्ण और राधा के उसमें यहाँ पर आ जाता है। कृष्ण भी क्या है, कृष्ण भूभाव के संसार जनमुक्ति कराने वाला तत्व है, केवल अपनी अहोति की शक्ति किसी राधा को अपने पास न रखता इस प्रकार का तत्व। और वो संसार में अपना किसी तरह से उस शक्ति को प्रयोग करके आजादी शक्ति है उसको प्रयोग करने के लिए यहाँ पर संसार में प्रयोग होता है। और विशेष रूप से देखा जाए वो शक्ति भी क्या काम करती है, शक्ति के तीन चार क्षेत्र वो राधा ब्रज बिहारी श्री कृष्ण के साथ निवास करती है, वही राधा वृंदावन बिहारी कृष्ण के साथ रहती है, वही राधा कुंज बिहारी कृष्ण के साथ रहती है, वही राधा निकुंज बिहारी कृष्ण के साथ रहती है। तो वो राधा का अपने अपने स्थान पर इस प्रकार का स्वरूप, ब्रज बिहारी कृष्ण के साथ में सारी गोपियां रहती हैं, राधा उसके साथ में जहाँ पटना में आएंगे कृष्ण आएंगे वहां पर युधि संजीव के साथ में राधा जी आएंगे, उससे आगे थोड़ा सूक्ष्म रूप होता चला जाता है, जहाँ कुंज बिहारी कृष्ण का स्वरूप आएगा वहाँ और सूक्ष्म स्वरूप होगा, वहाँ उनके साथ में राधिका जी के साथ में तो सखियां होंगी जिनको मंदिरी शब्द से उद्बोधित किया जाता है, लताया पक्ष में कोई मंजरी होती है उसका कुछ शुभ होता है, तो उनके साथ में कुछ सेवा भाव की आवश्यकता पड़ती है राधिका जी के लिए, तो सेवा वैसी सेवा नहीं संसार में होती है, वात्सल्य भाव की सेवा होती है, दास्य भाव की सेवा होती है, सख्य भाव की सेवा होती है, सभी प्रकार की सेवा करने वाली राधिका जी के साथ कुछ मंजरी होती है जिनको हम किंकरी कहते हैं। इस प्रकार से वृत्तीय क्षेत्र में रस्सी उपासना में शांत दास्य सख्य भाव वास्ते अंतिम जो चरम सीमा का जो रथ है वो माधुरी होता है, और माधुरी के जो मुख्य पात्र है रस तू भगवान श्री कृष्ण महाभाव की राधिका, उनका भी किसी प्रकार से उपासना का क्रम है उस रूप को ग्रहण करने वाली राधिका जी इन शब्दों के साथ में।
प्रत्येक का लेकिन मुझे एक ऐसा प्रयोग है कि स्पॉन्डलाइज की थोड़ी तकलीफ कभी कभी मुझे बैठने में बड़ा विवश कर देती है, और मैं बहुत शारीरिक असुविधा अनुभव करता हूँ, जितनी देर संभव होगा मैं अपने कर्म पावन करने का अवश्य प्रयास करूँगा, लेकिन अगर विवशता हो गई तो क्षमा याचना करनी पड़ेगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे कामक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे भागवत भागवतों के मध्य में भागवत की चर्चा जहाँ उचित है वहाँ बहुत दुर्गम है, दुरुस्त है। विद्वानों का ध्यान किशोर आकृष्ट करने की अपेक्षा नहीं है, वो गुरु से ही अवगत है। श्रीमद् भागवत के ऊपर आज 1,10,000 ग्रंथ प्राप्त है। अगर किसी प्राचीन जिसकी बहुत से प्रतियां भारत में उपलब्ध नहीं, जर्मन में जाकर के बर्लिन लाइब्रेरी जैसे गुजरात की का बाकी देव की टीका पूर्ण, इसलिए 5-7 मिनट से ज्यादा यहाँ बोलने का औचित्य नहीं है और 5-4 मिनट में किसी विषय को समझ लेना बहुत सरल भी नहीं है, संभव नहीं है। कुछ बोलना है इसीलिए दुस्साहस हाँ लगाए क्या बात है। परंपरा से श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय की परंपरा से भागवत के स्वाध्याय में रहते हैं और उसके विषय में जो कुछ जानते हैं एक बात जानते हैं और वो बड़ा आनंद देती है कि न जाने कितने जन्म और लेने पड़ेंगे जब भागवत के किसी अंश को जानने का सौभाग्य न हो। भागवत के प्रत्येक अध्याय में सुस्पष्ट है कि ये परमहंस संहिता पुराण या महापुराण या काव्य प्रबंध, अरे भाई तो कैसे आप यह सब तो बौद्धिक परितोष और बौद्धिक परिवेश में विभिन्न आधुनिक दृष्टिकोणों को लेकर के आक्षेपों को लेकर के आलोचनाओं को लेकर के अन्य लोगों की आशंकाओं से प्रभावित होकर के अपनी समाधि को छोड़ करके वही प्रदेश में प्रवेश करके निजोन्मेष को अवरुद्ध करना पड़ता है। वास्तव में तो ये परमहंसों के समाधिवेत्ताओं के तत्वज्ञों के सर्व विषय प्रपंच से और सामाजिकताओं व्यावहारिकताओं से निवृत्त महानुभावों के समाज स्वादन का ऐसा सदग्रंथ है जिसके स्वाध्याय के उपरांत किसी प्रकार की ग्रंथि का आवश्यक रहना संभव नहीं है। यदि सदगुरु के पाद पद्मों में प्रणत होकर के उसने प्रसन्नता पूर्वक उस परिवेश में प्रवेश करके स्वाध्याय का मंगल सुयोग लाभ किया अपने तर्क से और अपनी बुद्धि के परिमाण से अपने संस्कारों में अपने सदाचार और अपनी प्रकार के अपने प्रकार के प्रतिबंधों में रह करके मुक्त प्राण होकर के भागवत के विषय में सुनना समझना कुछ कहना ये संभव नहीं है। हमारे विद्वान लोग परिचित होंगे, हमारे बाबा ये सब बालक बाहर ले जाओ, बाबा से मतलब सार्वभौम शरद दक्षिणाथ जी आचार्य न्याय रत्न करके कि जब भागवत की कोई बात आती थी तो वे उठ करके खड़े हो जाते थे, केवल प्रणाम करते थे और इतना कहते थे मेरा इस विषय में प्रवेश नहीं, गति में और अनधिकारी को उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपवित्र को उसका श्रवण नहीं करना चाहिए। उनके बड़े भाई श्री बनवारीलाल गोस्वामी जी थे, केवल ब्रजमंडल में चक्रवर्ती जी का पढ़ाने वाला कोई विद्वान नहीं है, उन्हीं के श्रीमुख से हमने चक्रवर्ती के आश्रय में भागवत का पाठ किया। एक बात जो प्रसंग के सर्वथा अनुकूल है कि भागवत का भागवत ही श्री राधा, बिना श्री राधा के स्वरूप स्वभाव और औपनिषदक तत्व परिवेश के संपूर्ण आत्मा स्वाभाव और महदमुख निश्चित उस रसकुंज के संसेवन और संसाधना के अभाव में जैसे राधा तत्व स्वयं निगूढ़तम है, भागवत तत्व भी महान अरण्य है, महान अरणव है, जिसमें साधारण नौका को, बुद्धि की नौका को लेकर के और साधारण कमजोर पतवार को लेकर के, आकंपित आस्था को लेकर के और संत स्वाध्याय को लेकर के प्रवेश करना एक दुस्साहस मात्र है। श्री राधा पर तत्व केवल जैसे कुलवधू को सड़क पर खड़ी करके और बड़े बड़े कवियों से और रसिकों से और भावुकों से, कलाकारों से, नायक नायिका परिभेद निष्णात पुरुषों से उसकी नापतोल और समीक्षा करने के लिए बात कही जाए तो कविता बन सकती होगी, निबंध बन सकते होंगे, उसके आनक्षिक वर्णन की कुछ उदात्त भूमिकाएं संभावित हो सकती होंगी, लेकिन कुलौचित्य नहीं होगा, परंपरा संसिद्ध नहीं होगी और मर्यादा का परिपूर्ण परिपाठ नहीं होगा। उसी प्रकार से किन्हीं छोटे विषयों को लेकर के कोटि कोटि महानुभाव श्री श्री भगवान वल्लभ, श्रीमद रूप श्री सनातन, रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट, विजयध्वज वीर राघव मधुसूदन सूरीपाद और दूसरे दूसरे श्री चक्रवर्ती पाद, इन सब लोगों ने डूब करके सूखे पत्र खा करके गिरिराज की गुफाओं में रह करके, हमारे श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एक छोटी सी कुटीर में रहते थे, उद्धृति के लिए कोई ग्रंथ उनके पास नहीं था, कोई लाइब्रेरी नहीं थी, केवल किशोरी के ध्यान से उन्होंने अपने हरिभक्ति विलास में और श्री गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में, भक्ति रसामृत सिंधु में और कवि कर्णपुर में, अलंकार कौस्तुभ में जिन हजारों हजारों ग्रंथों की उद्धृतियां दे करके, राधा माधव महोत्सव जीव गोस्वामी का राधा पर तत्व पर उत्कृष्ट ग्रंथ है और श्री विठल प्रभु का श्रृंगार रस मंडन और महाराज हमारे ये मित्र हैं बालकपन से, वैसे अवस्था में कम है लेकिन भागवत की अंत आस्था में हम समवाय हैं, परंतु इन सब ग्रंथों के मर्म में जाकर के केवल इतना ही कही जाए कि मिश्री का डेला मेज पर रख करके और तरह तरह के पैमानों को लेकर के उसकी नाप तोल का प्रयास वैसा ही होगा कि सारी बेला व्यतीत हो जाएगी, रस बिंदु साधित नहीं होगा, भागवत के इन तत्वों को आलोचना और सामाजिकताओं के क्षेत्र में नंगा करके नखसीटा जाए, अपितु रसिकों के भावुकों के उपासकों के परिमंडल में उनके अश्रुल नेत्रों से रोमांचित गात से समस्त उस रसधारा की मंगल कुंडली के सरसी में मकरंद सौरभित होकर के स्नान सौभाग्य प्राप्त किया। और दूसरी बात अपनी असमर्थता कह दूं,
प्रथमं सर्वावतार मूलं रसात्मकं श्रीकेशवं प्रणम्य अवन्ति श्री भक्तवेदांत नारायण स्वामिनः आदरणीयाः अनल्पादरणीयाः श्री वृंदावनस्थ युगल स्वरूप रस रसिकाः श्री अतुल कृष्ण गोस्वामिनः अन्येपि श्रीमद् भागवत तत्व आराधकाः सर्वान् लोकान् हिंदी भाषायां प्रस्तुत विषय अवलंब्य किंचित अनुभूयते। बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे श्री अतुल कृष्ण जी गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि मिस्री का डेरा रख दिया जाए और कहा जाए साहब इसकी मधुरिमा पर प्रकाश डाली, जरा विचार करें आप, मिस्री में कहा मधुरिमा नहीं, मिस्री के डेरे को रखकर उसके माधुर्य पर प्रकाश डालें। उसी प्रकार मेरी बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण तत्व और राधा तत्व ये दो तत्व नहीं है। तत्व शब्द का अर्थ है तत्व और स्व, तत्व और स्व दो से तत्व बनता है। कोई कहता है पक्ष भाव तत्व, हम कहेंगे तयोर भाव तत्व। सच साच इति तौ, सच श्री कृष्ण साच श्री राधा, सच साच इति तौ तयो हो राधा कृष्णयो हो भाव इति तत्व।